यानी आपने जब तक देखे हुए के अस्तित्व को स्वीकार किया है तब तक सुने हुए का अस्तित्व सीखेगा ही नहीं। कितनी युक्ति लगाइए, कितनी देरी लगाइए, तो अब आप सोचिए कि आप देखे हुए के अस्तित्व को अस्वीकार करने को राजी है क्या, अथवा सुने हुए के अस्तित्व को स्वीकार करने को राजी है क्या? ये दोनों आपकी अधीन बात है। आप सुने हुए के अस्तित्व को स्वीकार भी कर सकते हैं और देखे हुए अस्तित्व को स्वीकार भी कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज जैसी दिखाई देती है वैसी है नहीं। एक नहीं अनेक प्रमाण मिल जाएंगे आपको, उदाहरण मिल जाएंगे और अपने द्वारा मिल जाएंगे। आपने देखा होगा कि सूरज देखने से बहुत छोटा दिखता है, पर आज वैज्ञानिक से पूछे कहें तो कई लाख गुना बड़ा है। जो कई लाख गुना बड़ा है वो आपको छोटा दिखता है। और मैदान में बचपन में आपने भी, मैंने भी देखा, आपने आप देख लीजिए, खूब मैदान में खड़े हो जाइए, दूसरी बात होगा आकाश और जमीन मिली हुई है। लेकिन क्या मिली हुई होती है? आप विचार करके देखिए, जिस दृष्टि को आप एक बार देखते हैं दोबारा देख ही नहीं पाते, लेकिन उस एक बार देखे हुए के अस्तित्व को आप स्वीकार कर लेते हैं, कहते हैं पुष्प बड़ा सुंदर है और मुरझा गया। तो ये मैं निवेदन कर रहा था कि अब ये निर्णय आप अपने द्वारा लीजिए और अपने लिए लीजिए, इसमें कोई आपको घाटा नहीं पड़ेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। कि हम देखे हुए में अस्तित्व करें कि सुने हुए में, अच्छा प्रतीति में अस्तित्व करें कि प्राप्त में, किसी शब्द से कह लीजिए। तो अगर आप प्रतीति के अस्तित्व को स्वीकार करेंगे तो काम का उत्पन्न, काम उत्पन्न हो जाता है। देखिए काम का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है और राम का ही स्वतंत्र अस्तित्व है। अगर दो शब्द ले लीजिए राम और काम, तो काम किसे कहते हैं? जिसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व न हो किंतु प्रतीति हो। अगर प्रतीति न होती तब भी चर्चा नहीं चलती। अब संसार भले ही मिथ्या कह दो, उससे कोई आपका खास लाभ हो जाए तो मुझे मालूम नहीं पड़ता, लेकिन उसका अस्तित्व आप स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए मिथ्या सत्य लगने लगता है। और जो परमात्मा सत्य है उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करने लगते, तो ये तो नहीं कह सकते मिथ्या लगता है, वो दूर मालूम होता है, अप्राप्त मालूम होता है। और यही सबसे बड़ा भ्रम है कि हम समझते हैं कि परमात्मा हमको अप्राप्त है। और यही सबसे बड़ा भ्रम है कि जो दिखाई देता है ये बंगला हमको प्राप्त है, ये मकान हमको प्राप्त है, ये बगीचा हमको प्राप्त है, यही एक बड़ा भ्रम है। प्रतीति को के रूप में प्राप्ति स्वीकार कर लेना और प्रतीति न होने पर अप्राप्ति मान लेना, ये बड़ा भारी भ्रम है। तो ज्ञान साधना भ्रम की नाशक है, किसी प्रकृति की नाशक नहीं है। ज्ञान होने से, मिट्टी का ज्ञान होने से घड़ा घड़ा नहीं दिखेगा, ऐसी बात तो नहीं है भाई। उसका उपयोग घड़े के रूप में नहीं होगा, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन मिट्टी का ज्ञान होने से आपको ऐसा लगेगा कि मिट्टी ही है, चाहे वो घड़ा है तो नहीं है तो। योग में और ज्ञान में अंतर क्या है? योग कहेगा पहले घड़े को तोड़ कर देखो कि मिट्टी है, और ज्ञान कहेगा भाई देख लो घड़े के रूप में भी मिट्टी है, तोड़ के भी मिट्टी है। तो ज्ञान के साथ जब योग हो जाता है तब ज्ञान विज्ञान के रूप में आ जाता है, फिर वो विशेष ज्ञान कहलाता है, पर वास्तव में वो ज्ञान ही है। तो इसी तरह से जब आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि जो मिला हुआ मालूम होता है, जो दिखाई देता है, क्या मैं उसके अस्तित्व को स्वीकार करूं? देखिए अस्तित्व को स्वीकार करना और उसका उपयोग करना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। उपयोग तो आप कर सकते हैं, मिले हुए का, देखे हुए का उपयोग आप कर सकते हैं, इंद्रिय ज्ञान का उपयोग आप कर सकते हैं, इंद्रिय ज्ञान के प्रभाव को नहीं स्वीकार कर सकते। अगर इंद्रिय ज्ञान के प्रभाव को स्वीकार करेंगे तो आपके जीवन में देखे हुए का अस्तित्व सीख जाएगा, देखे हुए का अस्तित्व आ जाएगा। और जब देखे हुए का अस्तित्व आ जाता है तो चाहे तो कह दो कि मौजूद से हम विमुख हो जाते हैं, चाहे कह दो सुने हुए का अस्तित्व ठहरता ही नहीं। सुनते तो है कि भगवान है और उनकी शरणागति भी लेना चाहते हैं और उनके होकर भी लेना चाहते हैं, पर क्या बताएं, बात तो समझ में आती है, बोले भाई जीवन में तो नहीं उतरती दिखाई देती। ये जो दशा हमारी हो जाती है ये इसलिए हो जाती है कि हम देखे हुए के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं करते। और देखे हुए का उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है, आप उपयोग कीजिए। आप विचार करके देखें कि खुराक और खाद एक चीज है, लेकिन खुराक का उपयोग खुराक के रूप में, खाद का उपयोग खुराक के रूप में तो नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। कोला और हीरा एक चीज है, लेकिन हीरा का उपयोग, कोले का उपयोग हीरे के रूप में कर सकते हैं क्या? आप वैज्ञानिक दीजिए, पूछिए, जिसको आप कोला कहते हैं वही कालांतर में हीरा हो जाता है। तो यद्यपि स्वरूप से कोला और हीरा एक है, परंतु उसका उपयोग कोले का कोले के रूप में होगा हीरे के हीरे के रूप में होगा। इसी दृष्टि से देखे हुए का उपयोग कीजिए, देखे हुए में आस्था मत कीजिए। आस्था माने उसके अस्तित्व को स्वीकार मत कीजिए, क्योंकि अगर देखे हुए का अस्तित्व आप स्वीकार कर लेंगे तो फिर जो मौजूद है, जो प्राप्त है, उससे दूरी अनुभव करने लगेंगे, उससे भेद अनुभव करने लगेंगे, उससे भिन्नता अनुभव करने लगेंगे। तो परमात्मा से दूरी अनुभव करना, परमात्मा से भेद अनुभव करना, परमात्मा से भिन्नता अनुभव करना, ये कहलाता है भोग, ये भोग कहलाता है। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि मिथ्या कहने पर भी उपयोग तो सब करते ही है, तो आप उपयोग कीजिए, उसके अस्तित्व को स्वीकार कीजिए। अब एक तरह घटना सुना है हमारे मन में, एक तरह ऐसी बात ना उदय हुई। उन दोनों पैदल चलता था, तो पैदल चलने में बिस्तर भारी लेने में ज्यादा लगता था, वो तकलीफ होती थी। हमने एक परिचित मित्र को लिखा, हमको एक गर्म कपड़ा चाहिए जो वजन में बहुत हल्का हो। उसका अर्थ ये था कि पश्मीना की चादर हो, उसका अर्थ ये कहा कश्मीर का सूट हो। एक जगह हमको मिल गया। जब मिल गया तो हम आपको क्या बताएं कि वर्षा है नहीं, हमने बदन को नंगा कर लिया, उसको छाती से लगा लिया, खराब ना हो जाए। अरे हमने कहा इससे तो कम्बल ही अच्छा था, इससे तो कम्बल बहुत अच्छा था। तो हमने अपने मित्र संत को दे दी, भाई तुम पहनो, हमारे काम की चीज नहीं है। और एक दफा हमको 300 रुपए का कपड़ा मिला, तो उसी में तय खोल के मैंने देखा, फिर दूसरे दे दिया। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि आप देखे हुए का उपयोग तो कीजिए, उसमें कोई आप सभी करते हैं भैया, चाहे हिमालय चंद्रा में बैठे वो भी करते हैं, और मुंबई के बाजार में बैठे वो भी करते हैं। देखे हुए का उपयोग किया जाता है, देखे हुए के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करना चाहिए। इतनी सी बात है, अगर आपने देखे हुए के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया तो अस्वीकार करने का फल होता है काम नाश। यह है, जब काम नाश हुआ तो चित्त हो गया शुद्ध, जब चित्त शुद्ध हो गया तब हो गया शांत, जब शांत हो गया तब हो गया स्वस्थ। तो चित्त का शुद्ध होना, चित्त का शांत होना और चित्त का स्वस्थ होना, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और कुछ नहीं, उसको कोई असमर्थ होगा भी नहीं। अब केवल चित्त स्वस्थ हो गया तो उससे क्या होता है कि वो उसमें लग जाता है जिसका अस्तित्व है, और उससे हट जाता है जिसका अस्तित्व नहीं है। यही चित्त का स्वस्थ कहना कहलाता है। हमारा मन स्वस्थ हो गया, हमारी बुद्धि स्वस्थ हो गई, मतलब क्या कि जिसमें लगना चाहिए उसमें सदा के लिए लग गई, और जिससे हटना चाहिए उससे सदा के लिए हट गई। तो ये चित्त को स्वस्थ करने के लिए पहले आपको शांत करना होगा, और शांत करने के लिए चित्त को स्वस्थ करना होगा, तो शुद्ध करना होगा। बहुत से लोग कहते हैं, हमने सुना है, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं वो बात ठीक होगी, देखिए, पर वो मैं समझ नहीं पाया। बात तो ठीक ही होगी, क्योंकि वो जरूरी थोड़ी है कि जो मेरी बात समझ नहीं आती उसमें झूठ कह दूं मैं, ऐसा मेरा मत नहीं है। तो मैंने लोगों ने सुना, मैंने कि साहब लोग ये कहते हैं कि उपासना करने से चित्त शुद्ध होता है, ठीक है, बताओगा। फिर मैंने सोचा, मुझे ऐसा पता लगा, क्या अशुद्ध चित्त में उपासना होती है क्या? यदि बहुत से लोग कहते हैं निष्काम कर्म करने से चित्त शुद्ध होता है, तो क्या अशुद्ध चित्त में निष्काम कर्म बनता है क्या? बहुत से लोग कहते हैं निष्काम कर्म करो, अरे निष्काम कर्म होता है कि निष्काम कर्ता होता है? आप सोचिए। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जिनको हम सुनते चले आ रहे हैं, मानते चले आ रहे हैं, अब बातें वो ठीक होंगी मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन कभी ये भी देखा कि बात तो ठीक है, जरा देख तो नहीं अनुभव करके। मैंने सोचा कि भाई अशुद्ध चित्त में उपासना सिद्ध नहीं हुई, और अशुद्ध चित्त से निष्काम कर्म का अनुष्ठान भी सिद्ध नहीं हुआ, इसका रहस्य क्या है? तो मुझको साफ दिखाई दिया कि भाई सत्संग से चित्त शुद्ध होता है, और जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो प्रवृत्ति मार्ग में जो कार्य करते हैं उसको निष्काम कर्म कह देते हैं, और उसी से उपासना सिद्ध हो जाती है, उसी से बोध प्राप्त हो जाता है। तो मनुष्य का जो पुरुषार्थ है वो एकमात्र सत्संग है, और सत्संग का अर्थ व्याख्या नहीं है, ये तो सब चर्चा है। सत्संग का अर्थ होता है जिसे हम अपने द्वारा जो हमें सही मालूम हो और उसे हम स्वीकार कर ले तो सत्संग हो गया। सत्संग स्वयं के द्वारा होता है, सब चर्चा, सब चिंतन, सब कार्य, इसके लिए हमें आपको शरीर का परिस्थिति का सहारा लेना पड़ता है। सत्कार्य बिना परिस्थितियों का सहारा लिए हो ही नहीं सकता, सब चिंतन बिना शरीर का सहारा लिए हो ही नहीं सकता, सब चर्चा बिना शरीर के सहारा लिए हो ही नहीं सकती। तो चर्चा चिंतन और कार्य के लिए तो शरीर की अपेक्षा रहती है, वस्तु की अपेक्षा रहती है, परिस्थिति की अपेक्षा रहती है, और शरीर को काम करने के लिए सृष्टि की अपेक्षा रहती है। आपकी कितनी सुंदर आंख हो, सूरज की सहायता से आप नहीं देख सकते, क्या देख सकते हैं? इसी तरह से शरीर समष्टि शक्तियों के सहयोग के बिना काम कर ही नहीं सकता। तो जब हम शरीर की आवश्यकता अनुभव करते हैं, तब हम संसार की भी आवश्यकता अनुभव करते हैं। आप विचार करके देख लीजिए, शरीर के द्वारा आप कुछ भी करना चाहेंगे तो आपको संसार का सहारा लेना ही पड़ेगा, मिथ्या भी कहते जाइए और संसार का सहारा भी लेते जाइए। अरे भाई, जब हमको आना पड़ता है तो रुपया मंगा मंगाना ही पड़ता है, मिथ्या भी कहे रुपया मिथ्या है और मंगाते भी रहे। आप विचार करके देखो कि जब आप एक बात दूसरी बात और सोचिए कि शरीर के द्वारा जो कुछ आप कर सकते हैं वो कार्य कई गुना अधिक यंत्रों के द्वारा हो सकता है। अगर शरीर के द्वारा ही सत्संग होता तो आज वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक लोग ऐसे यंत्र बना देते कि आज भाई हमारा यंत्र खरीद लो तो वो सत्संग हो जाएगा। लेकिन भगवान का कैसा अनुग्रह है, कैसा मंगलमय विधान है कि उन्होंने सत्संग को रखा स्वयं के द्वारा, शरीर के द्वारा नहीं रखा, स्वयं के द्वारा आप सत्संग कर सकते हैं। आप अपने द्वारा ये स्वीकार कर सकते हैं कि जो मुझे दिखाई दे रहा है, जिसमें मेरी प्रवृत्ति हो रही है, वो मेरी पकड़ में तो कभी आया ही नहीं। आप देखिए ना, प्रवृत्ति के अंत में कोई चीज पकड़ में नहीं आती, प्रवृत्ति की शक्ति का ह्रास होता है और अंत में अपने आप सहज निवृत्ति आती है और निवृत्ति से पुनः शक्ति का संपादन होता है। तो ये जो आपके जीवन का सत्य है कि निवृत्ति से शक्ति का संचय होता है, प्रवृत्ति से शक्ति का व्यय होता है, तो शक्ति का व्यय संसार के लिए करो, परहित में करो, यानी मिले हुए का, देखे हुए का ठीक ठीक उपयोग करो, उसका उपयोग करो। उपयोग करने में मिथ्या मान लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, और उसके पकड़ने में कोशिश करो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जो दिखाई देता है उसका आप उपयोग कीजिए, जो मिला हुआ मिला मालूम होता है उसका आप उपयोग कीजिए, उसको उसके साथ उसको पकड़ने की बनाए रखने की मत सोचिए। मैं आपसे पूछता हूँ कि शरीर को बनाए रखने की न सोचें तो मृत्यु का भय रहता है क्या? आप भी बताइए। और शरीर को बनाए रखने में सफल हुए हैं क्या? ये दोनों बातें सोचिए। मैं तो कहता हूँ कि शरीर को बनाए रखने में सफल होते तो कौन सा कोई कभी मृत्यु का प्रश्न नहीं रहता, और चूंकि बनाए रखने में सफल नहीं है इसीलिए मृत्यु मृत्यु चिल्लाते हैं। तो वो मैं निवेदन कर रहा था कि शरीर को बनाए रखने का प्रयत्न मत कीजिए, शरीर का सदुपयोग कीजिए। वस्तुओं को बनाए रखने का प्रयत्न मत कीजिए, उनका सदुपयोग कीजिए। योग्यता को बनाए रखने का प्रयत्न मत कीजिए, उसका सदुपयोग कीजिए। नहीं तो गहरी नींद में आपकी योग्यता क्या आपके काम आती है, बताओ जरा, आती है क्या आपकी योग्यता गहरी नींद में काम आती है क्या? आपको मानने पर नहीं आती है। तो जो आपके काम आने वाली चीज वही हो सकती है जो सदैव है, और जो सदैव होता है वो सर्वत्र भी होता है, और जो सदैव और सर्वत्र होता है वो सभी का होता है, और जो सभी का होता है वो अद्वितीय भी होता है और समर्थ भी होता है। इसलिए जो दिखाई दे रहा है उसके अस्तित्व को स्वीकार मत करो, और जिसको देखिए, माफ कीजिएगा, ज्ञान को भी आपने देखा नहीं है, ज्ञान है मौजूद देखा नहीं है, योग को भी देखा नहीं है, प्रेम को भी देखा, यह है सब तीनों मौजूद। जो बुद्धि की सीमा में ज्ञान थोड़ी जाता है, अरे आंख से आंख थोड़ी देखी जाती है भाई, आंख को भी थोड़ी देखता है। इधर डॉक्टर साहब के लिए आपके आंख में आंख का देख लो भाई, जो देखने वाला उसको रूप कहते हैं, आंख तो कहते ही नहीं। तो जो जानने में आता है उसको तो ज्ञान कहते ही नहीं, जिससे जाना जाता है उसको ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान का तत्व, योग का तत्व, प्रेम का तत्व आप में है, और उसी इन्हीं तीनों तत्वों को जिसकी महिमा कहते हैं वो परमात्मा है। अंतर इतना ही है कि परमात्मा को तो लोग बहुत कम ही पसंद हैं, परमात्मा की महिमा को पसंद करते हैं। बोले योग प्राप्त हो जाएगा तो हमें शक्ति प्राप्त हो जाएगी, बोले बोध प्राप्त हो जाएगा तो हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, बोले प्रेम प्राप्त हो जाएगा तो हमें भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो ये योग बोध प्रेम जिसकी महिमा है, जिसकी विभूति है, उसको देखा है क्या? सुना तो है भक्तों की वाणी में, संतों की वाणी में, वेद वाणी में सुना है कि भाई कोई ऐसा है कि योग जिसकी महिमा है, बोध जिसका स्वरूप है और प्रेम जिसका स्वभाव है। तो उस जिसका स्वभाव प्रेम है, जिसका स्वरूप बोध है, जिसकी महिमा योग है, उससे आपकी एकता है, जाति एकता भी है, नित्य संबंध भी है, आत्मीय संबंध भी है। तो प्रभु विश्वासी साधकों ने उस प्रभु से, इस प्रभु से योग जिसकी महिमा है, बोध जिसका स्वरूप है, प्रेम जिसका स्वभाव है, उस प्रभु से प्रेमियों ने आत्म संबंध स्वीकार किया, वो मेरा है। और विवेकियों ने उससे जातीय संबंध स्वीकार किया और योगियों ने उससे नित्य संबंध स्वीकार किया। तो ये नित्य संबंध स्वीकार करना, जातीय संबंध स्वीकार करना, आत्म संबंध स्वीकार करना, ये आपका स्वधर्म है, ये सत्य है, ये सत्य है, इसको आपने कर लिया स्वीकार। और शरीर से न आपकी जाति एकता है, न आपका नित्य संबंध है, न आपका आत्मी संबंध है। हम नए नए साधु हुए तो मधुकरी मारने गए, तो दरवाजे में आवाज लगाई नारायण हरि, उसमें से युवक निकला। और जब निकला युवक तो वो और हम कभी मिडिल स्कूल में साथ पढ़ते थे, मैं तीसरे दर्जे में था, वो चौथे दर्जे में था। और देखकर एकदम मुझे घेप जी लगी, कोई नया नया साधु हुआ था, मांगने की आदत कम थी, तो मन में सावरा संकोच लगा। वो प्रशंसा करने लगा, आपने बड़ा अच्छा किया, बड़ा अच्छा किया। और उसके बाद कहने लगा, आपको मालूम है कि किसका घर है? सच में मुझे क्या मालूम था, बोले देखो ये कलावती का घर है। आपने देखा होगा अपने यहाँ की लड़कियों की परंपरा है कि जब कोई उनके पुराना जान पहचान में तो उससे मिलना चाहते हैं। तो कलावती ने मुझे अंदर बुलाया, मैंने दरवाजे पर रोटी लेने चला आता, मुझे अंदर बुलाया तो युवती थी और हम और वो दर्जा एक में साथ साथ पढ़ते थे और बिल्कुल पास पास बैठते थे। उसको गणित कम आता था, मुझको अच्छा आता था, इसलिए आपस में एक तरह की संबंध सा था, एकता भी थी। तो लड़की हंसकर एकदम खिलखिलाकर कहती है ऊपर से, अरे अब तुम बाबा हो गए हो? मैंने कहा हाँ, हम बाबा हो गए हैं, तुम दाता हो गई हो। वो भी जानती है कि मैं वही हूं और मैं भी जानता हूं मैं वही हूं, लेकिन परिस्थिति वो है क्या, क्या रहा है? बोली परिस्थिति वो नहीं है ना। अब परिस्थिति को आप पकड़ लें, उसके अस्तित्व को स्वीकार कर लें और इसके इस अस्तित्व को भूल जाए कि भाई मैं तो वही हूं जो पहले था। आप ही देखिए, शरीर का परिवर्तन देखा आपने, योग्यता का परिवर्तन देखा, परिस्थितियों का परिवर्तन देखा। किसी भाई को, किसी बहन को कभी इस बात का भी अनुभव हुआ तो जो मैं पहले था वो नहीं हूं? मेरे जानते भाई मुझको तो कभी नहीं हुआ, आपको हुआ तो बताओ। ये अनुभव तो होगा, पहले मेरे मुझको लोग कम जानते थे, अब लोग ज्यादा जानते हैं, पहले मुझको मामूली आदमी कहते थे, अब मुझको साधु कहते हैं। इन सब बातों में आपने परिवर्तन पाया होगा, लेकिन इस बात में किसी ने परिवर्तन नहीं पाया कि जो मैं पहले था वो अब नहीं। सबको इस बात का पूरा अनुभव है कि जो मैं पहले था वही अब हूँ। तो अगर हम अपने ही अस्तित्व को मान लो स्वीकार करें, जैसे किसी को परमात्मा की अच्छी लगती हो तो मत मानो भाई, तुम अपने ही अस्तित्व को स्वीकार करो। तो अपने को तुमने देखा कहाँ बताओ? देखा था ही नहीं। जो 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 सबको देखता है उसको देखेगा कौन? जो सबको जानता है उसको जानेगा कौन? जिससे सबके अस्तित्व सिद्ध होते हैं उसके अस्तित्व सिद्धि के लिए आपके पास बाह्य साधन होगा क्या? कोई भी नहीं होगा। इसीलिए मैंने निवेदन कर रहा था आपसे कि अगर आप अपने अस्तित्व को स्वीकार कर लें कि मेरा अस्तित्व है, तो फिर अपने महत्व को भी स्वीकार कर लें, फिर अपने में अपना भी स्वीकार कर लें। जो साहब एक प्रक्रिया ये हो गई, अगर आप परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करें तो परमात्मा के महत्व को भी स्वीकार करें, परमात्मा को अपनत्व भी स्वीकार करें। परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने का केवल इतना ही नहीं है कि आपने मान लिया है परमात्मा है और हम अपने गुरु मंत्र का जप करते हैं, बड़ा अच्छा है। गुरु मंत्र जब तक शरीर धर्म है, जब गुरु से शरीर को ही लेकर के बनते हैं लोग, शरीर से उपलब्ध करना कोई गुरु न कोई चेला, तो वो शरीर धर्म के द्वारा गुरु मंत्र जप करें बड़ा अच्छा है। लेकिन एक बात तो सोचिए कि उस जिस मंत्र में जिस परमात्मा की महिमा गाई गई है, उस परमात्मा के अस्तित्व को आपने स्वीकार किया या नहीं? तो लोग क्या करते हैं, हाँ हम परमात्मा मानते हैं क्यों, और कहते हैं महाराज इस लड़के को वहां बीमारी हो गई है, अच्छा हो जाए। तो लड़के का अस्तित्व है कि परमात्मा का अस्तित्व है? आप सोचिए, आपने देखा होगा कभी कभी संपत्ति नाश होने से आदमी बड़ा अधीर हो जाता है, बेचैन हो जाता है, तो वहां परमात्मा का अस्तित्व है कि संपत्ति का अस्तित्व है? तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि अस्तित्व अगर आपको स्वीकार करना हो तो अपना करें अथवा परमात्मा करें। अपना करेंगे तो जगत और परमात्मा आप ही में आज मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा। परमात्मा में ये इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये दीन भाव नहीं है कि अगर ये अपने को स्वीकार करेगा तो मैं अलग हो जाऊंगा, उसमें नहीं है। तो चाहे आप अपने अस्तित्व को स्वीकार करें, चाहे आप प्रभु के अस्तित्व को स्वीकार करें, और आपको इन दोनों के अस्तित्व स्वीकार करने में कठिनाई मालूम होती है, और जगत का अस्तित्व स्वीकार करो। अगर जगत का अस्तित्व स्वीकार करोगे तब भी तो जगत का हुआ, मेरा तो कुछ नहीं रहा ना। आप देखिए ना, जिसका अस्तित्व होता है उसी की मिल्कियत होती है, तो जगत के अस्तित्व को स्वीकार करने पर भी आपको निर्मम होना ही पड़ेगा। तो नहीं कह सकते कि मैं हिंदुस्तानी, मैं अमेरिकन, मैं यूरोपियन, मैं एशियन, ये नहीं कह सकते। जगत एक तत्व है, जगत एक इकाई है, तो जगत एक इकाई है इसके स्वीकार करने में भी आप में समता तो आती है, उदारता तो आती है, आप देख लीजिए निर्ममता तो आती है, निष्कामता तो आती है। जब जगत एक इकाई है तो ये वाणी मेरी कहां से हो गई, जगत की हो गई। तो खाली थोड़ा सा दृष्टिकोण भेद होता है, कोई कहता है ये शरीर जगत का है, कोई कहता है ये शरीर माया मात्र है, कोई कहता है शरीर परमात्मा का है। तो परमात्मा की वस्तु मानकर आप परमात्मा के अस्तित्व को दृढ़ कर सकते हैं, और जगत की वस्तु मानकर जगत के अस्तित्व को दृढ़ कर सकते हैं, और अपने अस्तित्व को मानकर अपने को दृढ़ कर सकते हैं। तो ये आपकी स्वाधीनता है ना, कि आप यदि चाहें प्रभु के अस्तित्व को स्वीकार करें, आप यदि चाहें तो अपने अस्तित्व को स्वीकार करें, आप यदि चाहें जगत के अस्तित्व को स्वीकार करें। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि जगत के अस्तित्व को स्वीकार करके क्या बेईमानी का अधिकार मिल जाएगा, क्या भोग वासना पूर्ति का अधिकार मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो पर्सनल कुछ नहीं है ये बात भौतिक बात से निषिद्ध है, और पर्सनल और जो दिखता है वो कुछ नहीं है ये बात अध्यात्मवाद से निषिद्ध है, और जो दिखता है वो प्रभु की लीला है ये बात आशीर्वाद से निषिद्ध है। तुम्हारा नहीं है ये बात तो सिद्ध ही है तीनों दृष्टियों से। इस दृष्टि से अगर आप विचार करके देखें और आप ये मान लें कि भाई जिसको जो मुझे प्रतीत हो रहा है वो मेरा तो नहीं है, तो मेरा कौन है? जो मुझ में ही है, क्योंकि ज्ञान साधना है ना। तो मेरा कुछ ऐसी आदत बन गई है कि मैं ज्ञान, प्रेम और योग का विभाजन नहीं कर पाता हूँ। इसलिए कभी कभी प्रेमी जन मिलते हैं तो कहते हैं शरण की बिल्कुल बेकार आदमी है, वो तो ज्ञान की बात करता है, और ज्ञान वाले मिलते हैं तो कहते हैं विश्वास की बात करता है। तो मेरा नाम तो दोनों से कट जाता है एकदम, क्योंकि न तो मैं केवल विश्वास का ही समर्थन करता हूँ, न केवल ज्ञान का, जो विरोध किसी करता नहीं। मैं आप वैसे कोई जबरदस्ती लालसन लगा ले, लेकिन मैं वास्तव में न ज्ञान का विरोध करता हूँ, न विश्वास का विरोध करता हूँ, न कर्तव्य का विरोध करता हूँ। लेकिन ये मैं आप जरूर निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने अगर ज्ञान के अस्तित्व को स्वीकार किया है तो ज्ञान से क्या सिद्ध है? मेरा कुछ नहीं, आप विचार कर लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर ये दो बात के साथ अच्छा, और मुझे ज्ञान से क्या सिद्ध होता है कि मैं जानता हूँ मेरे साथ कोई बुराई नहीं करे। तो बुराई रहित होने की बात, अच्छा होने की बात, प्रेमी होने की बात, ये ज्ञान से भी सिद्ध है, योग से भी सिद्ध है, और विश्वास से भी सिद्ध है। तीनों ही दृष्टिकोणों से जो जीवन का सत्य है वो एक ही है। अब इसमें देखिए पक्षपात की बात नहीं है, अगर आपको ज्ञान के द्वारा आपको ठीक कर सकता है तो पहले आप ज्ञान के द्वारा जो आपका नहीं है उसको अपना मत मानिए। ये और किसी प्रकार तो अपना हटेगा नहीं। आप चाहे बलपूर्वक शरीर की तरह ऐसी बात कर रहा था तो साइंटिस्ट लड़का आया, कहने स्वामी जी आपकी योग्यता भी समाप्त होती है इंजेक्शन में। मैंने कहा भैया बात तो ठीक कहते हो, मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं बेहोश हो जाऊंगा, मस्तिष्क काम नहीं करेगा, पर मैं सच कहता हूँ कि जब मस्तिष्क काम नहीं करता है तब भी ज्ञान ज्यों का त्यों है, और मस्तिष्क काम करता है तब भी ज्ञान ज्यों का त्यों है। ज्ञान तो वो प्रकाश है कि जिसका कभी नाश होता ही नहीं, और जिसमें जिसका ज्ञान स्वरूप है उसी की योग महिमा है और उसी का स्वभाव प्रेम है। तो मुझे तो ऐसा लगता है तो मुझसे कोई पूछे तुमको ज्ञान चाहिए, बोले हाँ, योग चाहिए, बोले हाँ, प्रेम चाहिए, हाँ। मैं तीनों में से किसी को इनकार नहीं कर सकता हूँ, और आपको भी परामर्श देता हूँ भैया तुम तीनों ही को पसंद करो, लेकिन तीन में से आर्म चाहे ज्ञान से हो तो योग आ जाएगा, योग से हो तो ज्ञान आ जाएगा, प्रेम से हो तो ज्ञान और योग आ जाएगा। ये आपकी अपनी मर्जी की बात है, जहाँ जाके आरम्भ कीजिए। आपको योग बोध प्रेम की प्राप्ति हो सकती है, भोग मुक्ति की निवृत्ति हो सकती है। इसी सद्भावना के साथ बहुत बहुत मधुर आप अपनी सुधामयी
सर्व समर्थ
पतित पावनी अहेतु की कृपा से
मानव मात्र को
विवेक का आदर
तथा
बल का सदुपयोग
करने की सामर्थ्य
प्रदान करें। एवं करुणा सागर,
हे करुणा सागर,
अपनी अपार करुणा से,
अपनी अपार करुणा से
शीघ्र ही,
शीघ्र ही
राग द्वेष का,
राग द्वेष का
नाश करें,
नाश करें।
सभी का जीवन,
सभी का जीवन
सेवा त्याग प्रेम से,
सेवा त्याग प्रेम से
परिपूर्ण हो
जाए। चौथी मार्च 1970 लोनावाला तुलसी साधना कुटी।
तथा भगवत चरणानुरागियों निजातम ज्ञान स्वरूप के वास्तव यहाँ बहुत दिनों से जो सुनना चाहिए था वो सुन लिया, फिर भी सुनना चाहते हैं। हमें आश्रम लड़कियां गीत गाया करती हैं, सेवा करो स्वयं को जानो मानो सृजनहार, और चाह रहे तो जग में बिछड़ो दीजो सबको प्यार। तो जब कभी आपके जीवन में करने की बात आए तो भाई सेवा करो, जानने की बात आए तो अपने को जानो, और मानने की बात हो तो प्रभु को मानो। ये बात आपकी अपनी है और आपको अपने द्वारा मानना है। और फिर कोई पूछे भाई क्या बोले, अचार होकर चाह रहे सोकर जग में बिछड़ो प्रभु को दीजो प्यार, ये पीछे से बता दिया उसका फल। तो मैं ये निवेदन कर रहा था आपसे, सुनने की रुचि, बोलने की रुचि, ये जिसमें है उसका नाम है साधक। और इस रुचि की पूर्ति निवृत्ति हो जाए, पूर्ति होकर निवृत्ति हो जाए, इसका नाम है सिद्धि। तो प्रत्येक साधक को सिद्धि होती है, इस बात में अविचल आस्था रखनी चाहिए। मैं अपने को जान सकता हूं, इस बात में आस्था रखनी चाहिए, जानता तो हो ही नहीं। तो अगर आप अपने ज्ञान का अनादर नहीं करेंगे, अपनी आस्था में विकल्प नहीं करेंगे, बल का दुरुपयोग नहीं करेंगे, तो सचमुच आप उतने ही अच्छे हैं जितना अच्छा कभी कोई है या होगा। अपनी अच्छाई पर वो भूल जाने से, अपनी सुंदरता को भूल जाने से हम पराश्रय लेकर अपने को सुंदर बनाने की कोशिश करते रहते हैं और उसमें कभी सफल होते नहीं, हो सकते भी नहीं, होंगे भी नहीं। मतलब पराश्रय से जो कुछ मिलेगा वो रहेगा कैसे, वो तो रहेगा ही नहीं। इसलिए अपने द्वारा अपने में अपने को संतुष्ट कर लो, अपने द्वारा कर लो, अपने को कर लो और अपने में कर लो। तो अपने द्वारा अपने को अपने में संतुष्ट कर लिया जाए तो बस यही ज्ञान का महान फल है, यही समारोह में आने का महत्व है कि हम अपने को अपने द्वारा अपने में संतुष्ट कर लें। अर्थात पराश्रय को छोड़ दें, जो कि हमने अपनाया हुआ है। किसी चीज को अपना हम मानते हैं, चीज तो हमको अपना मानती नहीं। अगर कभी हाथ ये कहता मैं आपका हूं, तो हमने जीवन में कभी अनुभव किया नहीं हाथ ने कहा हो, या इंद्रियों ने कहा हो, या मन बुद्धि आज प्राणों ने कहा हो कि साहब मैं आपका हूं। हम अकारण ही कहते हैं मेरा हाथ है, मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, मेरी योग्यता है, मेरी सामर्थ्य है, ये हम कहते हैं। लेकिन जिसको हम अपना कहते हैं वो तो हमें अपना कहता ही नहीं। तो जो हमें अपना नहीं कहता है उसे भी हम अपना न माने, बस हो गया मेरा पार। देखिए कोई भी भय कब होता है, कोई भी पराधीनता कब महसूस होती है, जब हम कुछ भी अपना मानते हैं तभी भय होता है, तभी पराधीन होते हैं। मान लीजिए जिसके पास अपना करके कुछ न हो उसको कभी भय हो सकता है क्या, वो कभी पराधीन हो सकता है क्या? आप सोच लीजिए, जब जब पराधीनता मालूम होती है वो तभी मालूम होती है कि जो अपना नहीं है उसको हम अपना मान लेते हैं। अगर अपने ही को अपना मान लेते काहे के लिए पराधीन रहते, और जो पराधीन नहीं रहता वो स्वाधीन है। और एक बात हमको ऐसी बच्ची मालूम होती है कि जो स्वाधीन है वो किसी का शासक भी नहीं होता और किसी का शासित भी नहीं होता, न किसी पर शासन करता है न किसी शासित रहता है। और जो किसी पर शासन नहीं करता वो जो किसी शासित नहीं होता, वो सबको अपना मालूम होता है। बड़ी विचित्र बात है। इसलिए भाई स्वाधीन हो जाए तो उदारता भी आ जाएगी और प्रेम भी आ जाएगी। जब तक मानव स्वाधीन नहीं हो अपने को अनुभव करता है तो है ही है, तब तक वो न उदार हो पाता है न प्रेमी हो पाता है। और जो उदार नहीं हो पाता वो दुनिया के काम का नहीं, दुनिया उसको पसंद ही नहीं करती। और जो प्रेमी नहीं हो पाता वो प्रभु के काम का नहीं, और जो स्वाधीन नहीं हो पाता वो अपने काम का नहीं। इसलिए अगर आप इस जीवन को सामने रख करके केवल सिद्धांतों की चर्चा न करके और जीवन की चर्चा पर विचार करेंगे तो हर भाई को हर बहन को स्वाधीन होना है जो वो हो सकता है। और स्वाधीन होने से उदारता आ ही जाती है, प्रियता आ ही जाती है। और जहाँ ये तीनों बातें हैं, स्वाधीनता भी है, उदारता भी है, प्रियता भी है, वहाँ रस ही रस है, वहाँ निरस्ता नहीं रहती। उदारता में निरस्ता नहीं, स्वाधीनता में निरस्ता नहीं, प्रियता में निरस्ता नहीं। वो आप बड़े से बड़े मनोविज्ञान वेता से पूछ लीजिए कि जब तक जीवन में निरस्ता नहीं आती तब तक काम की उत्पत्ति नहीं होती। काम की उत्पत्ति का मूल कारण निरस्ता होती है। और निरस्ता कब तक रहती है? जब तक उदारता स्वाधीनता और प्रियता नहीं। और उदारता स्वाधीनता प्रियता कब तक नहीं? जब तक हमने अपने को आप में संतुष्ट किया नहीं। इसलिए मैं आपसे क्या निवेदन करूं, सचमुच आप उतना जानते हैं जितना जानना चाहिए, आप उतना कर सकते हैं जितना करना चाहिए, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और जो नहीं कर सकते हैं तो करना भी नहीं है, और जो नहीं जानते हैं वो जानना भी नहीं है। वही जानना है जो जानते हैं, वही करना है जो कर सकते हैं। इसलिए महानुभाव बड़े हर्ष की बात है कि आपका ज्ञान साधना शिविर की आज पूर्ण आहुति है। और जिन महानुभावों के हृदय में ये सद्भाव है, प्रेरणा है, जिनका प्रयास है, वे बड़े अच्छे मानव हैं। अब किसका नाम लूं किसका नाम लूं, तो जानते ही हैं। जिनके हृदय में ये प्रेरणा है, जिनके हृदय में पीड़ा है कि मानव स्वाधीन हो जाए, उदार हो जाए, प्रेमी हो जाए, जिससे वो अपने लिए, जगत के लिए, प्रभु के लिए उपयोगी हो जाए। और भैया क्या हूँ क्या है ये तो कभी ये प्रश्न तो सच पूछिए, तो ऐसा ही है। जब तक अपने को आप कुछ न कुछ मान लेते हैं तब प्रश्न होता है क्या हूँ, और ये कुछ नहीं में प्रश्न होता है क्या, और सब कुछ में प्रश्न होता है क्या? अगर आप सब कुछ है तब भी कोई प्रश्न नहीं, और आप कुछ नहीं है तब भी कोई प्रश्न नहीं, तो आप दोनों में से किसी ओर से देखिए। एक ये दृष्टिकोण भी है जिसे मालूम होता है मैं कुछ नहीं, एक ऐसा दृष्टिकोण जिसे मालूम होता है मैं सब कुछ। तो कुछ नहीं सब कुछ, और सब कुछ कुछ नहीं, आप विचार देख लीजिए। जो वास्तव में कुछ नहीं है वही सब कुछ है, और जो सब कुछ है वास्तव में कुछ नहीं, और कुछ न होने के सिवा हर पड़ती भी कुछ नहीं। इस दृष्टि अगर देखा जाए तो आप स्वाधीन होकर अपने आप का अनुभव करें, अपने द्वारा करें, अभी करें, सदा के लिए करें। अगर ये बात जैसे जाए आपको जाए तो, और वो भी जब आपको अपनी शिक्षा देखिए, मनुष्य को सीखी हुई बात में विकल्प हो सकता है, सुनी हुई विकल्प हो सकता है, लेकिन जो अपने द्वारा अपने में सिद्ध है उसमें कभी विकल्प होता है क्या? उसके लिए कोई गवाह देनी पड़ती है क्या? उसके लिए कोई सबूत देना पड़ता है क्या? तो जो बात अपने में अपने द्वारा सिद्ध है उसके लिए न गवाह देनी पड़ती है न विकल्प होता है। तो आप स्वयं सोचिए कि मेरा क्या है, ऐसे चलिए धीरे से। तो कोई भी चीज आपको अपनी मालूम हो मैं फैसला ले रहा हूँ, फैसला तो आपको देना होगा। तो फिर देखिए कि वो आपसे अलग है कि आप में है, जो चीज आपको अपनी मालूम हो, और देखिए वो आप में अलग है कि आप में है। अगर वो आपसे अलग है तो आपकी हो ही नहीं सकती, और आप में है तब भी आप उसको अलग कर ही नहीं सकते। तो विचार कीजिए, आप कहेंगे वो चीज मुझे मालूम होती है, मुझ में ही है, तो उसको अलग कैसे करेंगे? क्योंकि जो अपने में है वो अपने से अलग हो ही नहीं सकता, और जो अपना नहीं है वो अपने को मिल ही नहीं सकता। इस तरह से अगर आपको शरीर अपने से अलग मालूम होता है तो अलग है ही, वो आपका हो ही नहीं सकता। तो जो आपका हो ही नहीं सकता उसको जब आप अपना नहीं मानते हैं, आप देखेंगे जहां निर्ममता आती है वहां अपने आप निर्विकारता आती है। हमको कभी कभी आश्चर्य सा लगता है कि सब कुछ जानते हैं, सब कुछ मानते हैं, फिर भी कहते हैं साहब क्या बताएं, हमारा मन बड़ा विकारी है। भाई मन में कहां से विकार आया, क्या विकार आया? अगर तन को आप अपना नहीं मानते हैं तो मोह का विकार कहां देखा है आपने? तन को आप अपना नहीं मानते हैं तो लोभ का विकार कहां देखा है आपने? जब परिस्थिति को अपना नहीं मानते हैं तो विषमता का विकार आपने कहां देखा है? जब अवस्था को आप अपना नहीं मानते हैं तो प्रचिन्नता का विकार कहां देखा है? तो तन में विकार जो आपको दिखाई देता है, जीवन में विकार जो दिखाई देता है, वो किसी भूल से दिखाई देता है, और अपनी भूल से दिखाई देता है, और अपनी भूल का अपने को ज्ञान हो सकता है, और भूल का ज्ञान होने पर भूल मिट सकती है। ये जीवन का एक विधान है। अगर आपके इस विधान में आस्था हो जाए तो निर्मम होना अनिवार्य है, और निर्मम है भी। हम कह साहब ये पीस कुटिया कह रहा हूँ मेरी है, आज हमको वहां दूध मिलता है, आज हमको वहां आदर मिलता है, और कल कान पकड़ कर दिए जाए, मेरा कहा कान पकड़े गए निकाले गए। तो भाई क्या आप नहीं जानते हैं कि जो चीज कभी भी अलग होगी वो अभी भी अलग है? कौन भाई इस बात को नहीं जानते? कौन बहन इस बात को नहीं जानती कि जो चीज कभी अलग होगी वो अभी अलग है, और जो चीज कभी मिलेगी वो अभी मिली है? यानी मिला हुआ अलग होता नहीं, अलग होगा मिलता नहीं। तो समस्या क्या कुछ नहीं, आप विचार करके देखिए। फिर भी आप अनेकों समस्याएं खड़ी कर लेते हैं और अनेकों प्रकार की साधना असाधना के की चर्चा में लग जाते हैं, लेकिन गंभीरता से विचार किया जाए तो ज्ञान साधना का अर्थ क्या है? आप सोचिए कौन सी चीज ऐसी है जो आपसे अलग होगी, अपने द्वारा न कीजिए, सीखिए मत। तो ज्ञान सीखना जो है ये ज्ञान में विघ्न है, और विकल्प जो है वो आस्था में विघ्न है। तो ज्ञान की साधना में सीखने का प्रश्न ही नहीं है। आप स्वयं सोचिए कि कोई ऐसी चीज है क्या जो आपसे अलग हो जाएगी? आपको भ्रम मालूम हो जाएगा। आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले जैसा शरीर था वैसा आज नहीं है, आज है वैसे आगे नहीं रहेगा। इस ज्ञान से आप अपरिचित नहीं है, और आप कहने लगे हाँ साहब शरीर छूट जाएगा। अरे बाबा जो छूट जाएगा वो छूटा हुआ है, बस ये ज्ञान हो गया। और ये भगवान मिल जाएगा, अरे मिल जाएगा, मिला हुआ है, बस ज्ञान हो गया। तो अगर कोई भी बात आप अपनी बात देखिए, गुरु का ज्ञान, ग्रंथ का ज्ञान, संतों का ज्ञान, भक्तों का ज्ञान और आपका ज्ञान, इसमें कोई भेद नहीं है। परंतु भूल क्या होती है कि हम अपने ज्ञान का आदर ही नहीं करते। तब ग्रंथ का ज्ञान सीखते हैं, आप कहते हैं हाँ साहब अब क्या बताएं, तो पहले के महात्मा को मिलते ही नहीं। एक स्वामी ब्रह्मी महाराज थे, तो उनसे कोई साधु आ कह रहे महाराज मैंने गीता पढ़ ली है, तो बड़े खुश होते हाँ भैया रोटी आराम से मिल जाएगी। अभी क्या बता रहे भाई उन्हें गीता पढ़ ली, वो रोटी आराम से मिल जाएगी। तो वो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप अध्यात्म जीवन की ओर अग्रसर होना चाहते हैं अथवा अध्यात्म जीवन को अपनाना चाहते हैं, तो पहले आप अपने द्वारा स्वयं अनुभव कीजिए, फिर गुरुजनों के पास जाइए, संतों के पास जाइए, सब ग्रंथों को पढ़िए। सच्चा गुरु सच्चा ग्रंथ आपके उस ज्ञान का कभी विरोध नहीं करेगा, आपसे समर्थन करेगा। वही जान पाएंगे जो जानते हैं, वही पाएंगे जो पाए हुए हैं, और वही खोएगा जो खोया हुआ है। कोई नई बात न जान पाएंगे, नई बात पा पाएंगे, न कोई नई हानि हो जाएगी। इसलिए एक ही युक्ति देख लीजिए कि ऐसी कौन सी चीज मुझे मालूम होती है अपने पास अपने में जो मुझसे अलग हो जाए। बस इस बात का अपने द्वारा अभी अनुभव कीजिए, तो शायद मेरे जानते बुद्धि और बुद्धि का विषय और इंद्रियां और इंद्रियों का विषय, शरीर और शरीर का संज्ञान, सब कुछ आपको मालूम होगा कि मुझसे अलग है। तो जो आपसे अलग है वो कभी आपको मिलेगा ही नहीं, और जब आप अपने से अलग का ठीक अनुभव कर लेंगे तो अपने में जो आपका परमात्मा है वो आपको मिल जाएगा। तो मिलेगा इसलिए परमात्मा क्योंकि वो मिला हुआ है, और शरीर इसलिए अलग होगा क्योंकि वो अलग है, और फिर आगे एक युक्ति बना लीजिए कि भाई जो कभी भी अलग होगा आज हमें उसको अलग अनुभव करना चाहिए, जो कभी भी मिलेगा उसे आज हम मिला हुआ मान लेना चाहिए। तो परमात्मा को मिला हुआ मान लो और उससे भिन्न जो कुछ दिखता है उसको अलग अनुभव कर लो। देखिए ज्ञान में और आस्था में द्वंद नहीं है, विरोध नहीं है। ज्ञान हमें मुक्ति प्रदान करता है, आस्था हमें भक्ति प्रदान करती है। भक्ति क्या है? प्रियता। प्रियता कहाँ होती है? अपने में। किसके द्वारा होती है? अपने द्वारा होती है। तो अगर आप ये मान लें कि परमात्मा है और ये शरीर मेरा नहीं है, ये जान लें, जब शरीर मेरा नहीं तो संसार मेरा कैसे हो जाएगा? और जब परमात्मा मेरा है तो मुझे अपने बनाने की जरूरत क्या रह जाएगी? तो अपना मान लेना ये भी एक रस है, अपने को मान लेना ये भी एक रस है, ये सब रस के भेद है। और आप जानते हैं सृष्टि ऐसी विचित्र है कि दो व्यक्ति समान योग्यता के नहीं है, समान रुचि के नहीं है, समान सामर्थ्य के नहीं है। रुचि का भेद, योग्यता का भेद, सामर्थ्य का भेद होता ही है। उसी दृष्टि से साधक की साधना में अनेक भेद होता है। तो भेद होने से, साधना में भेद होने से साध्य में भेद नहीं होता। साध्य